ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के आज बहुत सुंदर मधुर महावाक्य सुने, जिसमें बाबा ने वरदाता को राजी करने की विधि बताई। सरल विधि, सहज विधि, वो जो विधि प्रैक्टिकल संभव है जीवन में, ऐसी विधि बाबा ने बताई। लेकिन आज की मुरली के साथ साथ मैं पिछले संडे की मुरली को भी अगर जोड़ दूं, तो जैसे ये एक मुरली के दो पार्ट थे। पहला पार्ट हमने पिछले संडे देखा, जिसमें बाबा ने दाता विधाता को राजी करने की विधि बताई कि जिससे चारों ही प्रकार के भाग्य और सर्व खजाने भरपूर हो जाते हैं। और उसमें बहुत सिंपल सी विधि बाबा ने बताई थी कि दाता विधाता को राजी करने की सिंपल विधि क्या है। तो बाबा ने कहा दाता विधाता को राजी करने की विधि यही है कि हर हाल में जो बच्चे राजी रहते हैं, नाराज नहीं होते हैं, वो दाता विधाता को राजी कर लेता है। क्योंकि छोटी छोटी बातें ही कभी कभी मन को बहुत डिस्टर्ब कर देती है, हलचल में ले आती है, और वो छोटी बात के जब तक रहस्य को समझो, तब तक तो अनेक प्रश्न मन के अंदर उभर आते हैं और हम कई रीति से नाराज और अपसेट भी हो जाते हैं। और उसके बाद जब अवस्था ठीक होती है तो समझते हैं अच्छा हुआ, जो हुआ सो बहुत अच्छा। लेकिन बाबा कहे कि जब ये विधि को पहले ही अगर अप्लाई कर दिया जाए कि हर हाल में मुझे राजी ही रहना है, तो नाराज होने का सवाल ही नहीं आता है। और इस तरह से जो ड्रामा के ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं, तो बाबा कहे वो सदा राजी रहते हैं। और जब दाता राजी हो जाता है तो बच्चों के सर्व खजाने भरपूर कर देते हैं, यानी वो अपने आप उस खजानों को अपने अंदर भरपूर करते जाते। जो हर हाल में राजी रहने वाले होंगे उसके जीवन से कभी खुशी गायब नहीं होगी, तो खुशी का खजाना भरपूर रहेगा। वो ज्ञान को सही तरीके से अप्लाई करना जानते हैं तो ज्ञान के खजाने से भी भरपूर रहेगा। और जब भरपूर है खुशियों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से, तो स्वतः सारी शक्तियां अंदर विकसित होने लगती है। और इसीलिए शक्तियों के खजानों से भी भरपूर हो जाएगा। जहां शक्तियां हैं तो गुण भी आ जाएंगे, तो सारे खजाने भरपूर होने लगते हैं। क्योंकि जब हम नाराज होते हैं, माना व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तभी तो नाराज हुए, तो वो लीकेज होने लगता है। जो सारी शक्तियां जमा करते हैं, जो खजाने अंदर जमा होता है, वो लीकेज होना चालू हो जाते, तो भरपूरता वाली स्थिति महसूस नहीं होती है। और इस तरह से अगर सारे खजाने हमारे भरपूर हुए तो नेचुरल है कि भाग्य विधाता भी राजी है ऐसी आत्मा पर, और इसीलिए उसके सारे भाग्य के खजाने भरपूर होने लगते हैं, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो और जन का हो। दुनिया में भी वैसे ये चारों प्रकार के भाग्य जिसको प्राप्त है उसको सदा सुखी का टाइटल मिलता है। तो ऐसे ही हमारे चारों प्रकार के भाग्य सदा भरपूर, और जहां ये भरपूरता है वहां ही उसका सुख अनुभव होने लगता है। तो कोई भी बात में क्वेश्चन नहीं, कोई भी बात में किसी को उलहना नहीं देना, तो ये है भाग्य विधाता को राजी करने की विधि। लेकिन आज जो बाबा ने तीसरा कहा, वरदाता को राजी करना, और वरदाता को एक ही शब्द प्रिय है, कौन सा बताया? एक। एक के साथ कई चीजें जुड़ी होती है जो बाबा ने भी मेंशन किया मुरली के अंदर, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, फिर एक मत, एक रस, एकांत, एकाग्रता, है ना? ये सारे शब्द जो है, ये एक की लगन में मगन होना, ऐसे एक के साथ जो कनेक्टेड सारे शब्द है वही भगवान को अति प्रिय है। और इसीलिए जब एक व्रता को बाबा डिटेल कर रहे थे सारी मुरली के अंदर, कि जहां एक बाबा दूसरा न कोई, ये जिसके अंदर धारणा है। साथ ही साथ एक व्रता माना बुद्धि, बाबा ने कहा सिर्फ जैसे दुनिया के अंदर पति व्रता या पिता व्रता उसको नहीं कहते हैं, लेकिन सर्व संबंधों में एक व्रता, कि एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक व्रता। हर समय जैसे बुद्धि के अंदर बाबा इतना इमर्ज रूप में रहे कि कुछ भी छोटा सा भी कुछ हुआ कि फौरन हमें याद कौन आए, कोई देहधारी इंसान याद ना आए लेकिन सबसे पहले बाबा याद आए, उसको कहा बाबा ने एक व्रता। लेकिन जब मैं इस मुरली की और बातों के ऊपर भी सोच रही थी जो बाबा ने कहा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, एक बल एक भरोसा किसको कहेंगे, हाँ, कि जहां इतना विश्वास हमारा अटूट हो तो कहेंगे हाँ एक बल एक भरोसा। कहते ना एक तू ही भरोसा है हमारा, तो दूसरा कोई भरोसा नहीं। इस बात को याद करते हुए मुझे शास्त्र की वो बात याद आती है कि महाभारत में जब द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर लाया गया तो उस वक्त उसने सबके तरफ देखा, सबसे पहले सबके तरफ देखा और हर एक ने अपनी नजरें झुका दी कि अब हमारे पर भरोसा नहीं रखो, तुम हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो भीष्म पितामह के तरफ देखते तो उसने भी अपनी नजरें झुका दी, गुरु द्रोणाचार्य पर देखा तो उसने भी अपनी नजरें झुका दी, अपने पतियों के तरफ देखा तो उन्होंने भी अपनी नजरें झुका दी। जब सबने नजरें झुका दी यानी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तब उसने ईश्वर को पुकारा। वहां तो कृष्ण दिखाते हैं महाभारत में कि उसने कृष्ण को पुकारा। भावार्थ यही कि आज की दुनिया के अंदर भी बाबा कहे कोई भी परीक्षा जब आपके जीवन में आती है तो उस वक्त हरेक की नजरें झुक जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार है। तो दुनिया के हर इंसान उस वक्त लाचार हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक ही भरोसा होता है भगवान का, कि वही अब जो करे। और इसीलिए जब टोटल सरेंडर, एक बल एक भरोसा, माना टोटल सरेंडर हो जाना, जब बुद्धि हमारी समर्पित हो जाती है, उसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। दूसरा, दिल से पुकारना। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जब एक बल एक भरोसा होता है तो दिल से ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ। जो उसने कृष्ण को कहा, हे कृष्ण अभी तू आ जा। अब सब लाचार है, कोई मेरी मदद के लिए नहीं है, तो दिल से आवाज निकलता है। और जब दिल से आवाज निकलता है तो बाबा की भी कहते हैं हुजूर हाजिर हो जाते हैं हर समय। जब इतना दिल से लगन से हम उसको पुकारते, उतना प्यार से उसको पुकारते, तो ये है एक बल एक भरोसा। सबसे पहला टोटल सरेंडर, दूसरा दिल से पुकारना, तीसरा वहां कर्म की गुह्य गति भी साथ में जुड़ती है, और निश्चयात्मक बन जाना, एक बल एक भरोसा माना निश्चय बुद्धि बन जाना। आप सोचेंगे हम तो है ही निश्चय बुद्धि, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि किसको कहा जाता है? यथार्थ निश्चय बुद्धि माना जहां शक की कोई गुंजाइश नहीं हो, पता नहीं, ये पता नहीं अंदर में उत्पन्न नहीं होता है, तो जहां शक न हो। दूसरा, जहां व्यर्थ न हो, पता नहीं बाबा मदद करेगा ना, तो व्यर्थ की मार्जिन न हो। तीसरा, जहां पर कोई उलझन न हो, क्योंकि जहां पता नहीं आया तो उलझन तो क्रिएट होगी, मूंझ अंदर होगी, तो निश्चय बुद्धि को न कभी उलझन होगी न मूंझ होगी, इसको कहते निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चय बुद्धि माना निर्भय, निश्चय है तो भय की आवश्यकता नहीं, अगर भय है माना निश्चय की कमी है, तो निश्चय माना निर्भय, निश्चय माना फुल स्टॉप, प्रश्नात्मक नहीं, कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है उसमें कि मैंने ये किया तो सही, लेकिन तो प्रश्न नहीं आ सकता है, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। तो यथार्थ निश्चय बुद्धि माना जहां शक न हो, मूंझ न हो, उलझन न हो, व्यर्थ न हो, प्रश्नात्मक न हो, निर्भय भय न हो, तब कहेंगे यथार्थ निश्चय बुद्धि। 100% जहां अंदर से एक गारंटी है कि हाँ बाबा है और वो करेगा ही, तो इसीलिए कहा टोटल सरेंडर। फिर दूसरा जो कहा, एक बल एक भरोसा माना, दूसरा क्या बताया, जहां दिल से पुकारना, दिल से आवाज आवाहन करना बाबा का, दिल से आवाहन करना, और तीसरा निश्चय यथार्थ निश्चय बुद्धि बन जाना, और चौथा चौथा अर्थात के कर्मों का जो सिद्धांत उसमें जुड़ जाता है कि शास्त्र के अंदर कितना सुंदर ये बात बताए कि पहले ये तीन चीज चाहिए, तब चौथा जो कर्मों का सिद्धांत जुड़ता है कि उसने जब दिखाते ना कृष्ण को अंगुली में लगा और खून निकलने लगा तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके, माना सोचा नहीं इतनी महंगी साड़ी है मैं कैसे उसका पल्लू फाड़ू, है ना, लेकिन फाड़ करके बांध दिया तो जितने उसमें रेशे थे उतनी साड़ियां उसको प्राप्त हुई। ये कर्मों की गुह्य गति उसके साथ जुड़ जाती, यानी हम पहले बाबा के लिए उस सरेंडर एक बल एक भरोसा के अंतर्गत हम कितना कर्म में इतनी लगन से कर्म करते हैं, बाबा के प्रति सेवा करते हैं, तो जितनी सेवा किया उससे कई गुना अधिक हो करके वहां कर्म का सिद्धांत जुड़ता है। ये है एक बल, कर्मों का बल, इसलिए कर्मों का बल माना गया है। और पवित्रता का बल, जितनी पवित्र भावना के साथ वो कर्म किया उसका रिटर्न देने के लिए भगवान भी बंध जाता। तो एक बल और एक भरोसा, ये भगवान को प्रिय है। उसको कहा वरदाता को राजी करने की विधि, तो पहली एक व्रता, दूसरा है एक बल एक भरोसा, फिर तीसरा है एक मत अर्थात श्रीमत। श्रीमत रूपी हाथ में बाबा का हाथ, में बाबा के हाथ में मैंने हाथ दिया अर्थात अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हम श्रीमत के अनुसार हर कर्म कितना करते हैं। बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक, सोना कैसे है ये भी परसों की मुरली में हम सभी ने देखा कि सोना कैसे है। सोने समय भी बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराकर फिर सो, उसी में धीरे धीरे नींद आ जाएगी तो अंत मते सो गति, दूसरे दिन सुबह में उठेंगे भी उसी विधि के साथ। तो बाबा ने हर एक कर्म के लिए जो हम श्रीमत हमें दी है उस श्रीमत पर हम कितना चलते हैं, तो वरदाता को राजी करना सहज है। अगर उस श्रीमत को तोड़ मरोड़ दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से, या अपनी मन मत या पर मत के प्रभाव में आकर के ठीक है ये कह दिया, तो श्रीमत तो नहीं हुई। तो जब पर मत के प्रभाव में चले रहे हैं तो बाबा राजी कैसे होगा। तो वरदाता को राजी करना माना श्रीमत जो है जैसी है वैसे ही उसको समझते हुए उसको जीवन के अंदर धारण करना और उस अनुसार चलना, अर्थात बाबा के हाथ में हमने अपना हाथ दिया है। तो इसीलिए बाबा ने कहा एक मत पर चलने वाला वरदाता को राजी कर सकता है। तो एक व्रता की खाली बात नहीं है, वरदाता को राजी करना माना कितनी बातें आ रही है ना। वरदाता को राजी करना माना एक व्रत के साथ एक बल एक भरोसा एक मत, फिर चौथी बात है एक रस। एक रस का मतलब, एक रस किसको कहेंगे, दो बातों में रस आता है, दो बातों में रस आता है। कौन सी दो बातों में हमें रस आता है, एक है इंद्रियों का रस, है ना, जीवा रस, कन रस, आंखों का रस, तो ये इंद्रिय रस, और दूसरा संबंधों में रस आता है। तो संबंधों का रस और इंद्रियों का रस, तो संबंधों का रस तो बाबा ने कहा सर्व संबंध मेरे साथ जोड़े, ताकि हम सर्व संबंधों का अतीन्द्रिय सुख का रस एक बाबा से प्राप्त कर सके। जो बाबा ने आज चतुराई बताई कि कई बार बच्चे चतुराई करते हैं कि बाबा आपके साथ मुख्य संबंध का रस तो है ही है, लेकिन फिर भी कोई यहाँ वहाँ चाहिए, तो बाबा कहे उसको एक रस तो नहीं कहेंगे। तो यही बात हम देख रहे थे कि एक रस माना सर्व संबंधों का रस, सुख का रस, हर संबंध से जो सुख की प्राप्ति होती है वो सर्व संबंधों के सुख का रस सिर्फ एक से हमारा, उसको कहते हैं एक रस। और दूसरा, जो इंद्रियां रस की प्राप्ति करना चाहती, तो इसीलिए बाबा ने कहा एक तुम्ही को देखूं, तुम्ही से बात करूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से हर कर्म करूं, यानी हर इंद्रिय से जो हम कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ बाबा के प्रति हो। तो सर्व संबंध के साथ साथ सर्व इंद्रियों का रस एक से ही प्राप्त हो। एक बाबा की बातों को सुनो, माना मुरली सुनते हुए उस रस में हम समा जाए, उस समय मुरली सुनते समय बाहर की दुनिया का कोई रस हमें आकर्षित न करे, एक बाबा को ही देखे हम तो नैनों का जो रस है उसमें भी बाबा समाया हुआ हो। अगर बातें कर रहे हैं हम किसी के साथ तो बाबा के सिवाय और कोई बात न हो हमारे, मुरली से हट करके और कोई बात या कोई पर चिंतन वाला रस वो न जाए, पर दर्शन वाला रस वो न जाए, है ना। तो सर्व इंद्रियां एक बाबा से ही वो रस की प्राप्ति करे। हर इंद्रियों का सुख, अति इंद्रिय सुख जिसको कहा, वो एक बाबा से हमें अंदर भरपूर करता रहे, ये है एक रस। तो ऐसे जो एक रस में होते हैं, लीन, जिसको दुनिया में लोगों ने कहा लीन हो गए, वास्तव में उस एक के रस में, सुख के रस में खो जाना या उसमें समा जाना, उसको कहा एक रस में खो गया है। एक ही रस है, उसके पास दूसरा कोई रस, पर चिंतन, पर दर्शन या और कोई रस है ही नहीं इस दुनिया का, एक ही रस है उसके पास। फिर पांचवी बात, एकांत। जब एक के अंत में खो जाना, अर्थात उस साइलेंस के रस में जाना, क्योंकि जब एक के अंत में हम खो जाएंगे तो खाली सुख का रस मिलता इतना नहीं, आनंद का रस उसमें मिलता है, शांति का रस उसमें प्राप्त होता है। तो वो सारे रस जो है उसमें समा जाना, एकांत, एक के अंत में खो जाना, स्नेह में समा जाना, उस प्यार में समा जाना, ये है एकांत। और उसके अंदर मन बुद्धि हमारी इतनी शांत हो जाए, साइलेंस के रस में खो गई, और वो रस इतना भा रहा है, अंदर इतना उसका आनंद आ रहा है कि वो मन बुद्धि इधर उधर कहीं जाए नहीं, तो वरदाता को प्रसन्न कर सकते हैं, या वरदाता राजी होकर के हर प्रकार के वरदान हमें दे सकते हैं। और छठी बात, एकांत के साथ जब एकांत में समाते हैं तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं एक नामी वाला इकोनॉमी करता है, एक नामी जिसके अंदर है, एक बाबा के प्रति ही सब कुछ है, तो इकोनॉमी का अवतार है। मुझे याद आता है एक बार हमारी कोई दादी या दीदी ने बात सुनाई थी कि एक परिवार था, तो उस परिवार में छोटा बच्चा था, तो उसने अपने पिता से कहा कि मुझे 10 रुपया चाहिए। तो पिता ने उसको कहा कि कल दूंगा, आज नहीं कल दूंगा। ये नहीं कि वो नहीं दे सकता था। दूसरे दिन उसने सुबह क्लास में जाकर के, गंगे दादी थी हमारी, तो गंगे दादी से पूछा कि बच्चा 10 रुपया मांग रहा है तो मैं दूं? तो दादी ने कहा भले दे दो, है ना। तो आकर के उसने दे दिया बच्चे को। तो बच्चे ने कहा ये तो आप कल भी दे सकते थे। तो कहा नहीं, आज मैंने श्रीमद प्रमाण दिया, आज जिम्मेवार बाबा हो गया, क्योंकि मैंने दादी से पूछ करके दिया, मैं ट्रस्टी हूं। अगर मैंने सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया है और मैं ट्रस्टी हो गया और तुम 10 रुपया मांग रहा है, अब जिम्मेवार बाबा है कि उस 10 रुपए से जो तुम करेगा तो मैं तेरे कर्मों का भागी नहीं बनूंगा, लेकिन बाबा अभी रिस्पॉन्सिबल है कि तुम उस 10 रुपए को कैसे खर्च करेगा, तो तुम रिस्पॉन्सिबल है बाबा। ये है एक नामी एकानामी, है ना। तो ऐसे परिवार शुरू शुरू में बाबा के ऐसे परिवार थे। आज हम सोचते नहीं है 10 रुपया मांगा ठीक है दे दिया, लेकिन उस समय में बाबा ने जो श्रीमत दी थी कि वो परिवार बाबा से पूछ करके, और बाबा नहीं है तो निमित्त आत्मा से पूछ करके वो श्रीमत लेकर के दादी ने कहा दे दो ना, तो तब उसने दिया 10 रुपया। और वो 10 रुपया दिया तो कहा अब मेरा कोई कर्म बंधन उसमें नहीं बंधा और कर्म संबंध में मैं आ गया। कहने का भावार्थ कि कितनी गहरी धारणा है ये बात, कि जहां बाबा को रिस्पॉन्सिबल बना देना और अपना कर्म बंधन, चाहे अपना ही बच्चा क्यों ना हो, लेकिन इस जन्म में हमें सारे बंधन चुकतू करने हैं। तो आप सोचो कि जब वो बच्चे को मालूम पड़ा कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया कि 10 रुपए को मैं कैसे खर्च करता हूँ, तो वो भी उसके अंदर भी वो संस्कार आएगा, क्योंकि उसको श्रीमत से जैसे यज्ञ का पैसा मिला, क्योंकि वो ट्रस्टी समझता था, तो ट्रस्टी होकर के अगर चलेंगे तो हर बात पूछ करके ही वो अपने बच्चे को भी अगर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा के प्रति ये संस्कार जैसे उसने बच्चे में भी इंड्यूस कर दिया, उस वक्त डाल दिया, तो बच्चा भी सोच में पड़ गया कि अब एक एक रुपया अगर मैं खर्च करता हूँ तो मुझे अपने जमा के खाते को खाली नहीं करना है। कितनी सूक्ष्म बात, लेकिन कितनी गहरी बात है कि हम जब कहने में कह देते हैं हाँ तन मन धन सब कुछ तेरा, हम तो ट्रस्टी हो गए, गृहस्थ में होते हुए भी हम ट्रस्टी होकर के बाबा का ये दिया हुआ तन मन धन सब कुछ संभाल रहे हैं, तो हमारी अंदर की भावना कि जहाँ मेरापन नहीं, मेरे बच्चे ने 10 रुपए मांगा इसलिए मैंने 10 क्या 100 भी उसको दे दिया, तो ये तो कर्म बंधन बंधेगा ना, जहाँ मेरा समझा। लेकिन जहाँ उसने श्रीमत लेकर के दिया तो वो मेरे को उसने तेरे में परिवर्तन कर दिया। ऐसे बाबा के समर्पित बुद्धि बच्चे थे यज्ञ के अंदर, गृहस्थ में रहते हुए भी संपूर्ण ट्रस्टी पन से चले। तो इसीलिए कहा कि जहां वो कर्म का हिसाब किताब नहीं बना तो बच्चे के अंदर भी वो संस्कार आया कि इसका एक एक पाई मुझे अच्छी तरह से खर्च करना है, ताकि मैं अपने जीवन के अंदर की कोई भी प्रकार का कर्म बंधन न बनाऊं। तो एकांत है, एक नामी है, तो इकोनॉमी सहज हो जाती है, और उसके साथ साथ एकाग्रता, जो बाबा ने कहा एकाग्रता, एकाग्रता माना मन बुद्धि की विचलित पना न हो। आज मन बुद्धि कहाँ विचलित होते हैं, तो देखा गया 2 बातों में मन बुद्धि विचलित होते हैं। एक तो या तो व्यर्थ में विचलित होते हैं, भटकते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। जब व्यर्थ चलता है तो व्यर्थ के साथ साथ धीरे धीरे नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है, तो वहां एकाग्रता खत्म हो जाती है। और दूसरा, अगर मन बुद्धि विचलित होता है तो किसमें, इच्छाओं में, ये चाहिए चाहिए की चाहनाओं में विचलित हो जाता है। तो एकाग्रता अगर नहीं बनती है तो उसका 2 कारण देखा गया, एक व्यर्थ, दूसरा इच्छाएं। तो एकाग्रता कहां से बनेगी, और इसलिए बाबा जो कहते हैं ये व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, क्योंकि कोई भी चीज को अगर खत्म करना है तो उसको परिवर्तन शरीर उसका रूप परिवर्तन करना आवश्यक है। तो व्यर्थ को अगर मिटाना है तो उसको अल्टरनेट को चाहिए। व्यर्थ संकल्प हमारा क्यों चलता है? क्योंकि उसके अल्टरनेट संकल्प, समर्थ संकल्प हमारे पास है। तो इसीलिए बाबा कहते जितना समर्थ में उसको परिवर्तन कर दो तो धीरे धीरे ये व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और व्यर्थ का खाता समाप्त हुआ, समर्थ अपने आप को बनाया, शक्तिशाली बनते जाएंगे। जहां समर्थ है वहां शक्तिशाली है और शुभ है, शुद्ध है। तो इसीलिए समर्थ में उसको चेंज करना, यानी हर बात के प्रति हमारा दृष्टिकोण। व्यर्थ कब उत्पन्न होता है? जहां कहीं न कहीं दृष्टिकोण नेगेटिव होता है वहां व्यर्थ क्रिएट हो जाता है। तो दृष्टिकोण को परिवर्तन करना, कहते भी है कि हर दृश्य को देखने के दो नजरिए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब नेगेटिव दृष्टिकोण अपनाते हैं तो व्यर्थ आरंभ होता है, और जब पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया तो समर्थ उत्पन्न होता है, है ना? जैसे दुनिया में कहा गया है कि दो व्यक्ति थे, एक ने कीचड़ में कमल को देखा और दूसरे ने चांद में भी दाग देखा, है ना? वैसे लोग वर्णन करते हैं कि भाई ये तो कोई माँ का इतना प्यारा बच्चा होगा तो कहेंगे तो चांद का टुकड़ा है, चांद जैसा है। लेकिन अगर बच्चे का मन के अंदर व्यर्थ चले तो क्या कहेगा? आपने मुझे चांद का टुकड़ा कह दिया, इतना दाग है चांद में, मेरे में भी दाग है, ये कहना चाह रहे। माना नेगेटिव उठाना चाहे तो उठा सकते हैं ना। व्यर्थ कितना चलना, अच्छा व्यक्त नहीं कर पाए तो कितना व्यर्थ चलेगा कि मेरी माँ ने मेरे को चांद कह दिया, इतने दाग वाला हूँ मैं क्या? तो दुखी नहीं हो जाएगा? व्यर्थ सोच सोच करके दुखी नहीं होगा? तो कहा एक ने कीचड़ में कमल को देखा, कीचड़ को नहीं देखा, कमल को देखा, और एक ने चांद में भी दाग को देखा। सारा दृष्टिकोण के ऊपर ही तो है। तो इस तरह से जीवन के अंदर जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है उन परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण मेरा कौन सा है? अगर हमने व्यर्थ चलना शुरू हुआ इसका मतलब हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव है, ये सिद्ध हो जाता है, तभी व्यर्थ चल रहा है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, माना हमारा दृष्टिकोण उस दृश्य को देखने के बाद भी समर्थ है, यानी पॉजिटिव है। इसीलिए जब बाबा ने कहा दाता विधाता को राजी करना, माना हर हाल में राजी होना, भावार्थ यही कि हर हाल में आप पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाओ। जब पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हर बात में कौन से विचार आएंगे? व्यर्थ उत्पन्न नहीं होगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए दृष्टिकोण को बदली कर दो, या दृष्टि देखने का नजरिया बदली कर दो। जब देखने का नजरिया बदली हो जाएगा तो अपने आप व्यर्थ संकल्प इमर्ज होने के बजाय समर्थ संकल्प की उत्पत्ति होगी। तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। जितना व्यर्थ होगा ना तो इतना मन विचलित होगा, मन को एकाग्र होने नहीं देगा। और दूसरा जो कहा इच्छा, तो बाबा ने हम बच्चों को कहा तुम्हारे पास सब कुछ है, ये भाव को अपने अंदर क्रिएट करना कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जब ये भाव आ जाता है कि हम भरपूर है अंदर से, जब भरपूरता की फीलिंग आई तो उसके बाद इच्छा ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ये इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। तो भरपूरता की फीलिंग को अंदर में क्रिएट करो। तो ये दो बातों से एकाग्रता सहज आने लगेगी, नहीं तो क्या होगा, व्यर्थ कभी कभी इतना चलना शुरू हो जाता है जो लोग शिकायत करते, क्या करे, नींद ही नहीं आ रही है। अब नींद नहीं आने का कारण क्या है? नींद ना आने का कारण क्या है? मन कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई ख्यालातों में चल रहा है, तो व्यर्थ ही कहेंगे। समर्थ चलने के बाद अगर नींद ना आए, ऐसे तो हो नहीं सकता है। समर्थ चलेगा तो खुशी उत्पन्न होगी, अगर खुशी नहीं है और विचार चल रहे हैं तो वो समर्थ तो हो ही नहीं सकता, वो व्यर्थ ही है। और जहां व्यर्थ की उत्पत्ति ज्यादा होगी तो अंदर से खोखलेपन का अनुभव जरूर करेंगे। तो मन बुद्धि की एकाग्रता लाने के लिए एक तो समर्थ, दूसरा इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति यानी भरपूरता की स्थिति अंदर में क्रिएट हो, और तीसरा जो बाबा हमेशा कहते कि मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बुद्धि क्लीन क्लियर चाहिए, क्लीन हो, स्वच्छ हो, और क्लियर यानी स्पष्ट हो। हर दृश्य को जो जैसा है वैसे ही उसको देखना, समझना, अपना मतलब न निकालना उसमें से। जब अपना मतलब निकालना चालू कर देते हैं तो बुद्धि का जो स्पष्टता है वो मलिन होने लगती है। तो जितनी हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है, प्योर है, उतनी मन बुद्धि की एकाग्रता सहज हमारी आने लगेगी, और उसी से ही हम वरदाता को राजी कर सकते हैं। तो वरदाता को राजी करना मतलब समझा, कैसे राजी होता है? तो इसीलिए बाबा ने आज मुरली के अंदर सरल, सहज और प्रैक्टिकल विधि बताई है। सरल है, सरल कि डिफिकल्ट लगता है कि अब तक तो सोचा ही नहीं था। बाबा ने तो मुरली में एक व्रता कहा तो एक व्रता के आधार पर तो हमने यही समझा कि वरदाता को राजी करना बहुत इजी है। नहीं, उसके साथ ये जो बातें बाबा ने जोड़ी थी, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकांत, इकोनॉमी और एकाग्रता, जब ऐसी हमारी एक, यही एक शब्द बाबा को बहुत प्रिय है, जब ऐसे एक में हम खो जाएंगे तो वरदाता को, तो एक एक चीज नहीं उठाओ लेकिन सारे को मिलकर के बस एक को राजी करना है मुझे, एक के पीछे ही हमारा फोकस हो, एक के इर्द गिर्द ही हमारी बुद्धि चलती रहे, तो एक एक बाबा को राजी करना सहज हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
बलिहार, ओ पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार,
हम तुम पर बलिहार बाबा, हम तुम पर बलिहार, हो
बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार।